अपनी उनकी आराधना इसलिए ये पूछे कर रहे हैं ये आपका बाल बाल गोपाल रूप है बस यही हमारे अंदर में खुशी है
और कुछ नहीं चाहता। बजी भक्ति के द्वारा भी ये नहीं पाया जाएगा। हाथ में लिए हुए दधि मक्खन और कमर में रस्सी बंधी है यशोदा माँ जी के वशीभूत होकर कह रहे हैं, रो रहे हैं आंखों से, मैया मैया कह रहे हैं। ये श्रवण कीर्तन इत्यादि नवधा भक्ति के अंतर्गत भक्ति का ये फल है। ये दुम्बई भक्ति का रागानुगा का ये फल धीरे धीरे रागात्मिक में ले जाएगा। ये रागात्मिक चीजें हैं, इसलिए वो कह रहे हैं यह मैंने इस वृंदावन में, इस गोकुल में आपका यह जो रूप है इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। सदा में मनस्या विरासता, सदा हमारे मन में इसी की स्फूर्ति रहे। श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन है। अब विशेष करके बृहद भगवतामृत के उत्तरखंड में इसका वर्णन किया गया गोप कुमार के प्रसंग में। गोप कुमार जबकि महाजनक को पार करता हुआ महर्षि लोक में पहुंचा, भूस्व महा इत्यादि सब ऋषि लोग थे। ये लोग कौन है? ये ज्ञानी हैं, कुछ योगी भी हैं। ये लोग योगी एक तरह से, ये लोग ध्यान में बैठ जाते हैं और बैठ करके चिंतन करते करते समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को, अनर्थों को दूर करके एकदम हृदय को निर्मल कर लेते हैं और उस निर्मल में मन में भगवान की चिंतन। कौन कौन भगवान की? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विशारारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवीदनगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। शंखाकारं भुजगशयनं, शांत सब कुछ शांत और उसमें मन में ध्यान करते हैं। कभी कभी अंगुष्ठ परिमाण विष्णु का ध्यान करते हैं और कभी कोई सहस्त्र शिष्या पुरुष सहस्त्र सहस्त्र उनके हाथ सहस्त्र पैर सहस्त्र शीर लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड थाउजेंड हेड फीट आर्म जरूर। मैं नहीं चाहता ये सब चीज। तो उसमें गोप कुमार जी जा रहे हैं और उनको समझा रहे कि देखो आंख से तुम देखने की चेष्टा कर रहा है भगवान को। यू वॉन्ट टू सी बाई योर आई कृष्ण देश बाल गोपाल यू अजय सखा आई कैनट सी ही, आंखें नहीं देख सकती इनको, ये पहले समझो भगवान को। जब ये शरीर चला जाएगा इसको, जब सूक्ष्म शरीर भी चला जाएगा, आत्म शरीर जब प्रकट होगा उस आत्म शरीर से वैष्णव के अनुगत में भजन करते 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 जब प्रेम होगा भाव अवस्था के बाद में आदो सत्ता तत साधु संग अत भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति। अभी तो अभी साधन भजन में मन नहीं लग रहा, सोचते हैं कि हम थोड़ा और सो लें, परिक्रमा गोवर्धन की कर सकते हैं, किंतु एक मिनट यहां पर पाठ सुनना इसमें आंख लग जाएगी। बतलाओ तो कौन बड़ा सुख है? पांच घंटा रसोई बना लेंगे, नींद नहीं आएगी। और थोड़ा सा यहां पर यदि हो ना बस थोड़ा सा कथा और सब तो की बात हो तो जरूर नींद आ जाएगी। साधन भजन कितना कष्टकर है ये समझो। इसलिए गोप कुमार जब गया तो उनको उपदेश रहे, आंख से ये नहीं दिखता भगवान, स्थूल शरीर दूर हो जाएगा, लिंग शरीर दूर हो जाएगा, वैष्णव के संग से आत्मा का शरीर उदित होगा और उसी वैष्णव के अनुगत में जब साधन करते अनर्थ निवृत्त हो जाएगा, सब सारी इच्छाएं दूर हो जाएंगी, तब भाव अवस्था भाव के बाद में प्रेम होने पर उनको देखा जा सकता है। तो ये इसके अंदर में देखा जा सकता है, जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, तो तुम ये आंख से देखने की चेष्टा मत करो। उन्होंने समझा कि इसका शरीर फूल और सूक्ष्म है। निरुपम प्रभु को जरा उठा दो, ऐसा उठो, ऐसा मन दिए सुनो। तो ब्रह्मा वो तो करेंगे, आंख से नहीं दिखेगा। आई कैन सी कृष्ण, सो ट्राई टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स देन। और आंख से मत देखो, मन से देखो। मैंने कहा प्रभु आप जैसा कहिए, किंतु हमारा मन तो करता है कि आंख ही से देखे। उन्होंने कहा देखो, स्थूल शरीर बढ़ता नहीं है, रबड़ बढ़ सकता है, लकड़ी लोहा ये सब चीजें नहीं बढ़ेंगी, और दर्पण में ही अपना ये रूप दिखाई पड़ेगा, लकड़ी में नहीं दिखाई पड़ेगा। वी कैन सी अवर शेप इन फूड और आयरन, बट इफ इट इज मिरर वी कैन सी। उसी तरह से मन में, आत्मा में, मन में रिफ्लेक्शन होने की गुंजाइश है भगवान का रूप, ये शरीर के द्वारा नहीं। इसलिए चुपचाप बैठो, कहीं मत जाओ, और यहीं पर ध्यान, भगवान का ध्यान करो। मंत्र हम बतलाते हैं, मंत्र के द्वारा भगवान तुम्हारे ध्यान में आ जाए, कहीं इधर उधर मत जाओ। राजे प्रभु आ ऐसा मत कहिए, हमको तो आंखों से ही देखने की इच्छा है, और उनके साथ में ये बाल गोपाल रूप देखने की इच्छा है हमारे सखा को। अजय ऐसा नहीं होता। देखो, आंख से हम किसी को देखेंगे तो पूरा नहीं देख सकेंगे, किंतु मन पूरा का पूरा देखता है। इसलिए गोपियों ने आंख से देख करके अपने हृदय में ले गई और उनको पूरे को देख करके आनंद। हम यदि आंख से देखने की चेष्टा करेंगे तो ऊपर वाला दिखाई पड़ेगा, नीचे वाला नहीं। एक साथ में नहीं, किसी गोपी ने आकर के राधा जी की सहेलियों से, विशाखा इत्यादि से या रूप मंजरी से कहा, सखी आज तो मैं कृतार्थ हो गई, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, हमने कृष्ण को पैर से लेकर के पूरा शरीर तस्वीर तक देखा। कहिए आप तो बड़ी धन्य हैं। एनी सखी वेंट टू रूप मंजरी विद्यार्थी ऑफ श्रीमती राधिका एंड टोल्ड दैट टुडे माई लाइफ हैज बीन फुलफिल्ड सक्सेसफुल। टुडे आई हैव सीन कृष्ण इन फूल। देन विद्यार्थी ऑफ राधिका टोल्ड that oh Sakhi, you are so successful, fortunate. When my Sakhi Radhika sees Krishna, if he sees the feet of Krishna and in feet only finger and that in finger nail, then he cannot hata sakti hai nahi apne aankhon ko. She cannot remove her eyes from that thing. When he sees eyes are face, our eyes go to eyes. हमारी आंखें वहीं पर बरबस जाकर के ठहर जाती हैं, वहां से हट नहीं पाती हैं। इसलिए तुम धन्य हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, मन से देखने की चेष्टा करो, आंख से मत देखने की चेष्टा करो, नहीं तो प्राकृत चीज हो जाएगी। कृष्ण का रूप प्राकृत नहीं है, इन आंखों से नहीं दिखेगा। इसके संबंध में हम लोग पीछे बतलाएंगे, आज अभी हम लोगों को चलना है, काफी परिक्रमा करना है। जो लोग एकदम नहीं चल सकेंगे वो डोली से जा सकते हैं, दोज हु कैन नॉट गो अप दे कैन गो बाई ट्रॉली It will be found on the step of the mountain and जो धीरे धीरे चल सकते हैं वो हम लोगों के साथ में गवर बन में होते हुए चले जाएंगे. तुम्हें उनको पंडा जी को तुम खबर कर देना. एक आदमी जा करके जाओ
जान
पड़े जाने
की
ये विश्वभानु खोर, दिस इज विश्वभानु खोर. विश्वभानु महाराज ये तो एक बात ही है. विश्वभानु महाराज प्रतिदिन सवेरे यहाँ पर जब रहते थे तो यहाँ पर स्नान करते थे. श्रीमती राधिका जी भी और उनकी सहेलियां भी यहाँ पर स्नान करती थीं. साथ ही साथ में उस तरफ में सुंदर उपवन था, अभी भी थोड़ा बहुत है. श्रीमती राधिका जी इस घाट पर और कृष्ण उस घाट पर स्नान करते थे. तरह तरह की विचित्र लीलाएं हुआ करती थी. विशेष करके आप लोगों ने सुना है रावल में राधिका जी का जन्म हुआ. उसके बहुत पहले यहीं पर वो लोग रहते थे. रावल में जमुना में कमल के ऊपर में राधिका जी खिलती हुई उनको मिली थी विश्वभानु महाराज जी को, और उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर और अपनी पत्नी कृतिका जी को उन्होंने गोदी में दे दिया. उसके पहले एक और पुत्र था जिसका नाम था सिदाम, और राधिका जी के बाद में एक और लड़की है जिसका नाम है अनंग मंजरी. तो कभी कभी तो वहां पर जन्म होता है इस ब्रह्मा के दिन में
कल्प में,
इस कल्प में वहां पर जन्म हुआ. और पहले पहले कभी कभी ये विश्वभानुपुर में ही इनका जन्म सुना जाता है. यहीं पर कमल के फूलों पर श्रीमती राधिका जी खेलती हुई विश्वभानु महाराज जी को मिलती हैं कभी कभी किसी कल्प में.
बसाना
में समटाइम्स देयर एंड समटाइम्स. विश्वभानु महाराज जी ने बहुत तपस्या की थी. तपस्या माने आराधना की थी, इसलिए राधिका जी यहाँ पर आई हैं. विशेष विशेष बातें हम लोग स्थान स्थान पर हम लोग बतलाएंगे. यहाँ का आगमन करेंगे. ये पहले परिक्रमा में सबसे पहले हम लोग यहीं पर आते हैं और यहाँ का आगमन करते हैं. विश्वभानु महाराज जी का ये प्रतीक है, इसलिए विश्वभानु महाराज जी की कृपा लेकर के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. बोल दीजिए.
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो.
हम लोग अभी बरसाने के अंतर्गत चाकरी खोर में उपस्थित हुए हैं. चाकरी खोर उसको कहते हैं जो दो पहाड़ों के मध्य में अत्यंत संकीर्ण रास्ता होता है, उसको साकरी कहते हैं. तो ये उस तरफ में देख रहे हैं सफेद पर्वत, कुछ पीला, और इधर में देख रहे हैं कुछ कृष्ण वर्ण. दोनों पास पास में लगे होने से भी दो प्रकार के रंग है. इधर में विष्णु अथवा कृष्ण कह लीजिए, ये कृष्ण पर्वत, और उधर में गौरी पर्वत, नामांतर में ब्रह्म पर्वत. दोनों के बीच में सकरी रास्ता है. उस पास में चिकसौली, इस पार में बरसाना. चिकसौली उस तरफ, और बीच में ये साकरा रास्ता है. चिकसौली ये चित्रा सखी जी क्या स्थान है, जन्म स्थान, उसी के पास में ऊंचा गांव, उधर में ललिता जी का गांव और उधर में विशाखा जी का गांव, थोड़ी देर में उधर में थोड़ा सा और चले जाएंगे, पास में ही एक दो माइल के अंतर्गत में रंग देवी, सुदेवी इत्यादि सब सखियों का ये सब जन्म स्थान है। उन गांवों के नाम भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहां से गोपियां बरसाना में आती थी और कृष्ण गोचारण करते करते अपने सखाओं के साथ में इस सकरी रास्ते में आ जाते। किसी समय में दान खाती आप लोगों ने गोवर्धन देखा है तो वहाँ का तो चौड़ा रास्ता है और यहाँ पर अत्यंत संकीर्ण, एक आदमी से अधिक नहीं जा सकता, इसलिए कृष्ण को यहाँ पर सुविधा है। इसलिए जहाँ कहीं भी ऐसा राजमार्ग है वहाँ पर दान घाटी होती है टैक्स वसूल करने के लिए, जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं टैक्स ले लेते हैं जाने आने का। पथ में हम चलेंगे किंतु रास्ता का जो पैसा है वो राज्य सरकार में चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कृष्ण गोचारण करते हुए आकर के सखियों को रोक देते थे और टैक्स मांगते थे, दान मांगते थे। ये दान का स्थान है। गोपियां आती थी, एक बार उन लोगों में तकरार हो गया, वाद विवाद हो गया। कृष्ण सुबल सिदान मधुमंगल लवंग अशोक कृष्ण इत्यादि सिदर से लठिया लेकर के खड़े हो गए और उधर से ललिता विशाखा इत्यादि के बीच में श्रीमती राधिका जी आ रही हैं। तो यहाँ पर आकर के जब उन्होंने टैक्स मांगा तो उन्होंने कहा जब टैक्स किस चीज का, तो आप लोग उधर से आती हैं, यहाँ पर राज्य है, किसका राज्य है, हमारे प्रभु का, तुम्हारा प्रभु कौन है कामदेव? वो है कंदर्प, हमारे प्रभु हैं। दान दे करके सीधी सीधी चली जाओ, टेढ़ी बात मत करो। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन है, राधा जी से पूछा तुम कौन है और तुम बड़ी बच्चसा हो, अधिक बोलने वाली, तुम बहुत बोलती है, तुम कौन हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम बतलाओ तो जो तुम कौन है, अतः तुम बतलाओ जो तुम कौन है। इस तरह से होने लग गया। कजे से तुम किस चीज का टैक्स यहाँ पर लेगा? तो मैं वृंदावन का अधीश्वर हूँ और हमारे प्रभु हैं कामदेव, मैं उनके लिए ये लूंगा, और यदि नहीं देती है तब बांध करके ले जाऊंगा उनके पास। अच्छा तो तुम्हारी हिम्मत हो तो बांध लो। तो तुम यहाँ पर आती है, आसपास में जंगलों में पेड़ों को रौंद देती है, पुष्पों को ले लेती है और इधर से आती है जाती है, इसलिए इसका टैक्स है। उन्होंने कहा तुम तो अच्छे भक्षक होकर के रक्षक बन रहे हो, वृंदावन का एक पेड़ पौधा फूल लगाया है, बतलाओ तो, अरे इसकी तो मालिकनी वृंदा जी है। इसी तरह से बहुत झगड़ा होने लगा किंतु कृष्ण ने एक भी बात माना नहीं, सखाओं के साथ में उनके मटुकियां तोड़ दी, ऊपर में चढ़ गए और लेकर के जब जा रही हैं तो मधुमंगल यात्री जी से कह करके उस पर कंकड़ी फेंकवा दी और मट्टी टूट गई और वो पूरे दूध दही से स्नान कर। गोपियों ने देखा ये रोज रोज का ये तमाशा ठीक नहीं है, इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए सब लोगों की परिषद बैठी गोपियों की और निर्णय किया कि इनको कुछ शिक्षा दिया जाए।
कल हम लोग गुप्त रूप में आएंगी और घने जंगल में छिप जाएंगी लाखों की संख्या में, और जब कृष्ण उत्पात करने आएंगे और टैक्स मांगने आएंगे तो हम लोग पूरा शुल्क समेत आज तक जो दिया है उसका पूरा का पूरा वसूल कर लेंगे और प्लान बनाया कि क्या करनी चाहिए। राधिका जी को दलपति उनको ललिता जी को दलपति बनाया गया, अब बिगुल उनके हाथ में दे दी गई। सवेरे सवेरे आकर के चारों तरफ हम कुंजों में छिप गई और जब कृष्ण उनको रोकने लगे और उनकी दहिया दही लेने लग गए लूटने लग गए, उस समय में ललिता जी ने बिगुल सीटी बजाई और इंगित किया लाखों करोड़ों गोपियां निकल करके यहाँ पर चली आई और जितने सखा थे सबको पकड़ लिया, पकड़ करके कृष्ण को पकड़ लिया, मधुमंगल को, सिदाम, सुबल इत्यादि को, और इन झाड़ियों में इन पेड़ों में उनकी चोटियां बांध दी पकड़ करके। मधुमंगल रोने लगा, मैं कान पकड़ता हूँ आज से अब फिर नहीं करूंगा और इसके साथ में मैं नहीं आऊंगा, बस एक हमको लड्डू दे दो। इसके बाद में सिदाम, सुबल और सबको यहाँ पर बांध करके कृष्ण को भी बांध दिया, चोटी बांध दी और कृष्ण को पकड़ करके अच्छी तरह से गुलचे लगाए, गाल फुला दिया है, यू नो गुलचा लाइक दिस, इस तरह से मारा उनको, गाल फुला दिया और एक गोपी का लहंगा खोलकर और उनको लहंगे पहना दिए, ऊपर से चुनरी उड़ा दी, घूंघट निकाल दिया, कृष्ण के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं उनकी भी चोटी कर करके सेंदूर इत्यादि लगा दिया अपना और पक्का उनको ग्वालिन बना दिया और मटका उनके सिर पर दे दिया और उनको पकड़ करके इधर से चलने लगी तो ऊपर से ललिता जी ने कंकड़ी मारा और वो पूरा दही का दही कृष्ण के ऊपर में गिर गया और गोपियां ताली बजा करके हंसने लगी। इस प्रकार की लीला यहाँ पर कृष्ण ने कृष्ण से कहा फिर करेगा नहीं तो कान पकड़ो, मधुमंगल इत्यादि सब बिना कहे हुए कान पकड़ने लगे, अब उनको फिर छोड़ दिया और इस तरह से ये लीलाएं यहाँ होती, बुरी लीला होती है। विशेष करके ये जबकि राधा जी का जन्मोत्सव होता है तो एक पहले या पीछे होता है बुरी लीला जाती आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसके अतिरिक्त यहाँ का नियम है, यदि किसी गाय को या भैंस को कोई बच्चा हुआ दूध देने लगी तो पहला दिन का दूध जो शुद्ध हो जाने के बाद में पहला दिन यहाँ पर ले करके ढाल देते हैं, यहाँ पर वहाँ पर वो स्थान है और उनका दही या दूध दे करके दिया जाता है। और यहाँ पर आगे चलेंगे तो लठिया टेकने का कृष्ण का स्थान या लठिया टेक करके चलते थे जिस लठिया के गोपियों को घेरते और सुनते हैं उनकी पगड़ी का चिन्ह भी कुछ कुछ वहाँ पर है, पगड़ी जो बांधते थे लंबा सा चिन्ह है, उन लीलाओं का यहाँ पर कुछ स्मृति चिन्ह है। कृष्ण को हुए हुए 5000 वर्ष से भी अभी किंतु आज तक परिक्रमा चलती है और ये सब स्मृतियाँ लोग दर्शन करते हैं, इन स्थानों पर आकर के लीलाएं करते हैं और दर्शन करके उनकी चरण धूलि लेते हैं और उन लीलाएं हमारे अंदर में स्फूर्ति हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी इन लीलाओं की स्फूर्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे इन दोनों से, इधर में कृष्ण उधर राधिका जी का स्थान, और ये सब साक्षी हैं उस लीला के, ये पेड़ भी उसके साक्षी हैं। हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये सब लीलाएं हमारे अंदर में स्फूर्ति हो और हम दोनों की सेवा कर सकें, यही प्रार्थना करके हम चले। अभी रामचंद्र जी जो हमने कहा है संक्षेप में इन लोगों को बतला दें। एक कीर्तन किया वृंदावन में कृष्ण लीला और राधा जी की लीलाओं के उद्दीपक ये सब चीजें हैं, आलंबन कृष्ण और राधा जी हैं,
और उद्दीपन है राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, नौका खेल खेला के लीला वाला मानस गंगा, कुसुम सरोवर, गोपियां चयन कर रही हैं पुष्प कृष्ण को हार पहनाने की, सूर्य कुंड, कदम बटे बंसीवर, पर्वत, मयूर, कोयल, भ्रमर, यमुना की तरंगे मानो कमल के पुष्प को लेकर के और राधा कृष्ण के चरणों में उपहार दे रहे हैं। मयूर नृत्य कर रहे हैं, केका केका करते हैं, भ्रमर संगीत मानो कंदर्व का शंख बजा रहे हैं, कोयल भी कुहू कुहू कर रही है, चारों तरफ में हरियाली छाई है, मानो सभी राधा और कृष्ण का स्मरण दिला रहे हैं। मैं इन स्थानों को छोड़कर के कहीं नहीं जा सकता, यदि जाऊं तो हमारा प्राण निकल जाए, मैं इनको कभी कदापि नहीं छोड़ सकता। रघुनाथ दास को श्री रूप गोस्वामी जी ये सभी इसी भावना के साथ से ब्रज में रहते हैं। यही सिक्सौली ग्राम है जहाँ पर चित्रा सखी का जन्म हुआ था, गोप के घर में। चित्रा जी समस्त विषयों में जितनी भी कलाएं हैं समस्त कलाओं में पारंगत थी। इतना सुंदर चित्र का अंकन करती थी मिनटों में, जब कृष्ण का फोटो लेकर के राधा जी का, राधा जी का कृष्ण को दर्शाती थी। पशु पक्षियों की बोली में जानने में पारंगत थी, सुंदर चित्र कलाएं कर देती थी, सुंदर रचना तिलक की करती थी। रसोई इत्यादि से लेकर के ऐसी कोई कला नहीं थी, पुष्पों का हार विचित्र रूप में ग्रंथन करती थी और राधा कृष्ण को प्रसन्न करती थी। आठ सखियां प्रधान है, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदु लेखा रंग देवी सुदेवी तुम्हु विद्या, उसमें से एक प्रधान। पार्टी में रंग देवी सुदेवी का स्थान है, ललिता जी का स्थान है, विशाखा जी का स्थान है और सब सखियों का स्थान, और सबकी शादी कहाँ हुई जावन वही पर उनकी सेवा करती है। ऊपर से दिखलाने के लिए किंतु सभी इसलिए हम लोग स्थान से चल रहे हैं, ये सब एक एक लीला की उद्दीपना कराती है इसलिए आते हैं, और ये उद्दीपना एक दिन राधा कृष्ण के स्वा में हमें लगा दी। हम इस गांव में आए हैं, चित्रा जी हमारे ऊपर में कृपा करें, हम सबके ऊपर में कृपा करें, उन कलाओं को मैं पारंगत होकर के राधा जी की विशेष करके सेवा हम कर सके, उनकी पाली
शानगढ़ मानगढ़ और विलासगढ़, यहाँ पर मोर कृपी है, राधा जी और कृष्ण मोर बन करके, मोरनी बन करके नृत्य किया है, बहुत ही सुंदर दृश्य होगा, तो आप लोग जो जो जा सकते हैं वो जल्दी से दौड़ करके चढ़ जाएं, और बूढ़े केवल हमारे जैसे हैं।
और यहाँ पर कुंज बने हुए थे, हम लोग कुंज में बैठ करके राधा जी का कीर्तन करते थे, विशेष करके ललिता विशाखा इत्यादि के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में। श्रीमती राधिका जी इस ग्वहर वन में छिप जाती और कृष्ण उनको खोजते थे, ढूंढते थे, और उसी के बहाने सब सखियों से मिलते थे। राधा जी भी उस कुंज में छिप जाती, कृष्ण उनको खोजते, और कृष्ण जबकि छिप जाते तो राधा जी इस कुंज में उनको खेलते थे। इसलिए ये गहवर, गहवर माने बड़ा घना, और इसमें जाना प्रवेश बड़ा कठिन है। राधा कृष्ण का प्रेम भी ऐसे गहवर है, इसमें सभी लोग नहीं जा सकते, बिना ब्रज भाव के इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, ललिता जी से, विशाखा जी से, चित्रा जी से, अभी चिकसौली छोड़कर आए, यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे कि वो लोग हमारे ऊपर में कृपा करें, हम नित्य काल के लिए उनकी पाल्य दासियां बन करके उनकी सेवा में हम लोग नियुक्त हो सकें, यही हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इनके भजन करने वाले रूप सनातन जी के, रूप रघुनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, जैसे उन्होंने भजन करके कृष्ण लीला को अनुभव किया, हम लोग उसी के अनुगमन करते हुए हम भजन राज्य में प्रवेश कर सकें, इसलिए उनके चरणों में भी प्रार्थना। और सभी लोग मिल करके जितने कृष्ण से लेकर के राधा जी से लेकर के उनकी सहेलियां, रूप चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, सब लोग मिल करके हमारे ऊपर में कृपा करें, ऐसे हम लोगों का उद्धार नहीं होगा, तो वो सभी मिल करके कृपा करें जो हम लोग इस गवर्नमेंट में हम लोग प्रवेश करके उनकी सेवा कर सके, यही प्रार्थना हम लोग करेंगे। अभी सभी लोग मिल करके कीर्तन करेंगे,
कीर्तन वही नहीं करना।
दानगढ़ है और मानगढ़ है। राधा जी का पर्वत मंदिर, श्री मंदिर भी उसी के ऊपर में, और इधर में बिलासगढ़, ये विष्णु पर्वत इधर से, इसके ऊपर में बिलासगढ़ है। दानगढ़ में हम लोग,
ये मानगढ़ है।
अब बिलासगढ़ किधर? अच्छा, तो उधर में बिलासगढ़ और ये है मानगढ़, और दानगढ़ आगे आएगा जहाँ पर हम लोग जाएंगे। तीनों में अनंत सब लीलाएं हुई हैं, एक दो नहीं, ये सब लीला भूमि है उनकी। तो यहाँ पर मानगढ़ कहलाता है। इधर में मानगढ़ किस लिए? राधिका जी ने मान कर लिए, इसलिए मानगढ़। बिलासगढ़ क्या? बिलास दोनों का हुआ, अभी किशोरी किशोरी अभी नहीं हुए हैं, वयसंधि, संपौगंड कमिंग इन किशोर, इट इज अभी अभी किशोरी किशोरी अभी होने जा रही हैं, और वहां पर खेल खेल रही हैं धूल से सखियों के साथ में। इतने में खेल खेल रही थी, कृष्ण कहीं से आ गए। कृष्ण ने पैर से उनकी घरौंदा जो मिट्टी का बनाया था धूल का, उसने तोड़ दिया। कृष्ण भी बना रहे थे, उसको राधिका जी ने तोड़ दिया। कहे तुमने क्यों तोड़ा? तो तुमने क्यों तोड़ा? इतने में जोर से आंधी आई, धूल ऐसी उड़ी, चारों तरफ में अंधकार छा गया। उस समय में दोनों में प्रीतिपूर्वक सब लीलाएं हुई। ऐसे ये बिलासगढ़, कितनी कितनी सब लीलाएं। मान के संबंध में, दान के संबंध में आगे हम चल करके बतलाएंगे, अभी कीर्तन करके हम चलें। मान हुआ था, कैसे उसका अपनोदन किया, हम वहां पर बैठ करके जहां पर प्रति वर्ष बतलाते हैं वहां पर बतलाएंगे। गौर प्रेमानंदे
मन गिरे धारी, गिरे धारी श्याम बन
आप देख रहे हैं गोवर्धन है, इस तरफ में आपने मानगढ़ देखा और इधर में बिलासगढ़। मान एक प्रेम का ही तरंग है, वो प्रेम को और बढ़ाता है। ये जगत में मान होने पर क्रोध हो जाता है, किंतु वहां पर क्रोध नहीं है। प्रेम का यही लक्षण है परिभाषा। प्रेम के नष्ट हो जाने का कारण उपस्थित होने पर भी वह प्रेम बढ़ता जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, तब वो प्रेम होगा। किंतु इस जगत में यदि कहीं मान भी देखा जाता है तो मान ना होकर के पीछे थोड़े से के अंदर में क्रोध के रूप में बदल करके द्वेष भावना आ जाती है। तो यहाँ पर अप्राकृत मान है, प्रेम का अधिकार है। यह मान किसी कारण से होता है या बिना किसी कारण का भी हो सकता है। यदि बिना किसी कारण के होता है तो वो बिना किसी कारण के दूर भी हो जाता है सहज ही, केवल देखा और हंस दिया तो वो मान भी दूर हो गया। और कभी कभी यदि कोई कारण उपस्थित हो गया तो वो गंभीर मान हो जाता है। कभी कृष्ण ने वादा किया, मैं अभी आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए राधा जी से, वृंदा जी ने इंगित संकेत दिया ये कृष्ण आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, राधा जी ये मानगढ़ में जहाँ भी है वहीं पर कुंज में उनके लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। अभिषेक तो किया और कृष्ण के लिए सुंदर सेज बनाए और कृष्ण आएंगे तो हो गया बासक सज्जा। और उसके बाद में प्रतीक्षा करने लगी किंतु कृष्ण आए नहीं तो उनका मन खराब होने लग गया, उत्कंठिता उत्कंठित हो गई। कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, देखा जी अभी नहीं आए। इतने में एक सारी सारी माने सुख पक्षी स्त्री जाति वो उड़ करके आई और कहने लगी ये कृष्ण यहाँ नहीं है, ये चंद्रावली के साथ में मिल रहे हैं। और सुनते ही ठीक उसने कहा जिस अरे तुम कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रही है वो सारी राधा जी की थी। बतलाई कृष्ण को तो हमने देखा चंद्रावली जी के साथ में विहार कर रहे हैं, बड़े आनंद से वहाँ पर हैं और वहाँ पर पद्मा जी और सत्या जी और सब सखियाँ हैं। सुनते ही इनका मन खराब हो गया और अपने अलंकार इत्यादि निकाल दिए, बड़ी दुखी हो गई। उत्कंठिता से अब क्या हो गया, खंडिता हो गई, खंडिता हो गई माने अब कृष्ण नहीं मिलेंगे। अब सोची जी से बहुत दुखी हो गई और ये खंडिता से होते ही होते होते अब मान हो गया जब उसको अब कभी नहीं मिलेंगे। बहुत देर के बाद में विप्रलब्धा, विप्रलब्धा माने आए कृष्ण किंतु कुछ चिन्ह उनके अंगों में है जैसे वहां पर गए थे उनसे मिले थे, इसलिए देख करके क्रोध और मान दोनों एक साथ में उत्पन्न हो गया। जब मान हो गया तो उन्होंने सखियों से कहा कि अब कभी उससे हम नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण जब आए तो कलह करने लगे और कलह करके जब कृष्ण मन खराब हो गया तो वो मिलने से जबकि राजी नहीं हुई। कृष्ण बहुत मनाते मनाते हार गए, सखा लोग मनाते हार गए किंतु जब नहीं मानी ललिता विशाखा के कहने से तो कृष्ण मन खराब करके वहां से लौट गए। विशाखा जी से मिले बहुत दुखी होकर के, तो विशाखा जी ने उनको कोई मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद में तो उन्होंने वैसा कहा जैसे कि विशाखा जी ने कहा, सामने तो ही है सुंदर सखी का रूप धारण किया मोहिनी, श्यामली जी हैं या मोहिनी जी, और रूप धारण करके हाथों में हार और साजी बास्केट उसमें फूल तरह तरह के ले लिए और मालिनी के रूप में
मैसेज भी जानती हैं, सब प्रकार की कलाओं में चतुर हैं, सुंदर गाना भी गाती हैं, साथ में वीणा भी है, सब प्रकार की कलाओं। और वो विशाखा जी के कहने से ऐसा बेस बना जो कोई पहचान न सके और उस्मानगढ़ पर पहुंची। देख करके विशाखा जी और ललिता जी और सब कहने भी ये बहुत सुंदर गाना गाती है और सुंदर मैसेज करती है, सुंदर हार बनाती है, श्रृंगार करती है, एक बार उसे बुलाओ ना, कहो तो मैं बुला लें। राधिका जी ने कहा जिसे बुला लाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा मन भी खराब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यदि मेरा बदल जाए मन, इसलिए उसको बुला करके वो ले आई। पहले तो उसने सुंदर वीणा पर ऐसा सुंदर वीणा बजाया सप्तम स्वर में, वीणा एकदम गूंजने लगी और राधा जी का मन भी उछलने लग गया, धीरे मुक्त हो गई। इसके बाद में वो बाना बंद करके ललिता विशाखा जी ने कहा हमारी सखी आज बहुत क्लांत हो गई है, बड़ी उदास है, इनको तुम प्रसन्न कर दो। तो उनके चरण दबाना आरंभ किया और फूल की माला सुंदर करके और गले में खुद अपने आप लगाया। जिस समय वो लगा रही थी उसके हाथों के कंपन और उसके स्पर्श से वो समझ गई ये और कोई नहीं, ये तो श्याम सुंदर जी हैं। किंतु किसी को बतलाया नहीं, आंखों से ललिता जी को विशाखा जी को बतलाया और वो तो जानती ही थी। फिर उन्होंने चतुराई करके कहा राधा जी ने उससे, तुम इतना सुंदर हमको वीणा बजाया सुनाया और इतने सुंदर रूप में माला हमको पहनाई, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम जो कुछ मांगो तुमको देंगे। तब एक बात है, पहले मैं तुमको दूं, इसके बाद में तुम पीछे मांगना। मेरी इच्छा आज ये है, ये तुम्हारा लहंगा पुराना हो गया है और चुनरी भी पुरानी हो गई है, तुम्हारे अंग रक्षक ये हैं वो भी पुराना हो गया है, आज मैं अपना नया सुंदर हीरे मोती से जड़े हुए चुंदरी और लहंगा और अपने अंगों पर अपना जो कमीज है वो सब कुछ आज तुमको अपने आप हाथों से पहनाऊंगे। कृष्ण सुन करके डर गए, या तो भेद खुलेगा, भागने की तैयारी में इधर उधर देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि सखी बड़ी लजीली है, बहुत सुंदरी है, इसको लज्जा आ रही है, किंतु आज इसको उपहार दिए मैंने, मैं छोड़ूंगी नहीं। बस सब सखियों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनके कपड़े ऊपर के हैं उतार दिए और उतारने जब लगे लहंगा पहनाया, ऊपर से चुंदरी उठाया और जब उनके कपड़े उठाने लग गई तो देखा जैसे दो फूल कदम्ब के बड़े बड़े फूल वहां पर गिर पड़े। अतः तू अब सब स्त्री का वेश बना करके आए। अब गोपियां ने देखा अब ताली बजा करके हंसने लगी, राधा जी का इसी में मान भी दूर हो गया और सब आनंद हो गया। फिर कृष्ण उन दोनों से मिले, ये मान को इस प्रकार से दूर किया। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लीलाएं हैं, हजारों हजारों लीलाएं हैं, उसमें से एक दिन की एक छोटी सी हमने पुष्प लेकर के आपको सुनाया। भजन करने पर ये सब चीजें अनर्थ दूर होने पर हम लोगों के हृदय में अपने आप आए, ये पर्वत पहाड़ ही हमारे ऊपर में कृपा करें। बिना भजन का यहाँ रहने वाला भी इन सब लीलाओं को नहीं जानता। आपको ट्रांसलेशन में
एक भी नहीं सुनी है, ने तो मेरी गलीन में आई है ना,
सखी कहती है
लालन एक भी नहीं सुनी है, ने तो मेरी गलीन में आई है ना, आई है तो चुप है चल जाइए, बंसी बजाइए गाइए ना,
गाइए ना आइए ना, क्यों कि हम डिस्टर्ब होते हैं। आप बंसी बजाते और गाते उससे हमको डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए आप चुपचाप रहिए।
लालन एक भी नहीं सुनी है, नित मेरी गलीन में आई है ना, आई है तो चुप है चल जाइए, बंसी बजाइए गाइए ना, फिर गाइए तो इतहू बितहू, मेरे द्वारे पे आए सुनाइए ना, सुनाइए तो अपनाइए ना,
اپنائیے تو کہوں جائیے نا. جب ہم کو آپ اپنا لیں تو پھر آپ کو جانے کی کہیں آوشیکتا نہیں ہے, آپ کہیں نہیں جائیے. پھر کیا دیکھا کہ بھگوان کہیں نہیں ملے, ڈھونڈتے پھرے تو بھگوان کہیں نہیں ملے تو کہاں ملے؟ برہم میں ڈھونڈو پرانن کانن, بید سنو سچ چوگ نچائن, دیکھو سنو کبہو نہ کتو, وہ کیسے سوروپ اور کیسے سبھائن, ہیرت ہیرت ہار چکو رس کھان بتاؤ نہ لوگ لگائن, دیکھو دروے تو کنج کبیر میں, دیکھو پلوٹت راج کا پائن. بھگوان کہاں ملے؟ شری رادھکا جی کے سرار میں لیٹتے ہوئے ملے. کہیں ملے, کہاں ملے؟ کہیں برہم میں ڈھونڈ لیے, پرانوں میں ڈھونڈے, شاستروں میں ڈھونڈے, کہیں نہیں ملے. برہم میں ڈھونڈے پران سادھن کی سنگت میں, بار بار سدا پد پنکج میں, شیش پہ نوایا کر نہایا کر پیارے تو مار سنگ تنیا میں, رج کو لگایا انگ انگ ہلسایا کر, پایا کر پربھو کے پرساد کو پرسن ہوتے, اور شری بن راج جو کی پرکما جایا کر لایا کر دھیان, بلویر من مگن ہو کے بیٹھ پر نکنجن میں شری رادھا گن. سنا یہاں کا یہ ہے دان
گڑھ ہے,
دان کی کتھا ہے. انہوں نے بتایا کہ کرشن نے وہاں پر دان لیا,